एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा।
अधिक तू सदा याद रखना।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। ये हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम सब तेरे पास आते हैं, तेरे वचनों से सुनने जा रहे हैं पिता। हमारे मनों को, हमारे हृदयों को खोल दे। विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता मेरे श्रोताओं के लिए, उनको तेरे वचन को समझने के लिए मदद कर और तेरे वचन के द्वारा तेरे तरफ आकर्षित कर पिता, और उन्हें तेरे रास्ता में चलने के लिए मदद कर। मुझे तेरा सामर्थ्य दे, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ्य द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है हमारा सदाकाल का परमेश्वर। आइए हम बाइबल से भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक उसका 45 अध्याय का 22 पद पढ़े। यहाँ पर लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, मेरी ओर फिरो और उधार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। यशायाह 45:22। ईश्वर के बारे में स्पष्ट अवधारणा होना महत्वपूर्ण है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि वह बुराई से कैसे संबंधित है और हमें उसके साथ कैसे संबंध रखना चाहिए। क्या ईश्वर के पास दाढ़ी है? एक 4 वर्षीय स्वीलर ने अपनी माँ से पूछा। तुम क्यों जानना चाहती हो? उसकी माँ ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि स्वीलर ने समझाया, मुझे दाढ़ी पसंद नहीं है, और अगर ईश्वर की दाढ़ी है तो मुझे अभी से इस विचार की आदत डाल लेनी चाहिए, ताकि जब मैं स्वर्ग में उनसे मिलूं तो मुझे उन्हें गले लगाने में कोई आपत्ति ना हो। स्वीलर की ईश्वर के बारे में जिज्ञासा ईश्वर में हमारी अपनी रुचि और उस रुचि को संतुष्ट करने की आवश्यकता दोनों को प्रतिध्वनित करती है। लेकिन हम ईश्वर के बारे में कैसे जान सकते हैं? हम मानते हैं कि हम वास्तव में उसे तब तक नहीं जान सकते जब तक कि वह खुद को प्रकट करने का विकल्प ना चुने। इसलिए हम आभारी हैं कि उसने खुद को सृष्टि, बाइबल और मसीह के जीवन में प्रकट किया है। हमारे पास एलन वाइट के लेखन भी हैं, जिन्हें अक्सर भविष्यवाणी के आत्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो एक भविष्यवक्ता के माध्यम से ईश्वर के रहस्योद्घाटन की एक आधुनिक अभिव्यक्ति है। इन सभी स्रोतों के माध्यम से हम ईश्वर से परिचित हो सकते हैं, जिसे जानना अनंत जीवन है। यूहन्ना 17:3। सच्चा ईश्वर को जानना ही प्यारो अनंत जीवन है, बाइबल कहती है यूहन्ना 17:3 में। परमेश्वर को जानना हमें मानव जीवन की दलदल से बाहर निकालता है। हालांकि हमें आदम का पतित स्वभाव विरासत में मिला है, फिर भी हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब हम परमेश्वर के चरित्र को और अधिक पूरी तरह से प्रतिबिंबित कर सकेंगे। हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। भजन संहिता 90:1-4 पद में पढ़ेंगे तो हम इस बात को पाएंगे। आइए हम इसे पढ़ें। यहाँ कहता है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। दूसरा पद कहता है, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। चौथा पद कहता है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। इस भजन में मूसा ने हमारे अस्थाई अस्तित्व की तुलना ईश्वर की अनंतता से की है। हमारा जीवन सीमित है, हम घास की तरह आते जाते रहते हैं, हम अपने वर्षों को एक कहानी की तरह बिताते हैं, लेकिन ईश्वर हमेशा के लिए रहता है। आइए आगे की वचनों को देखें। यहाँ परमेश्वर का वर्णन किस प्रकार किया गया है। प्रकाशित वाक्य 11:15 कहता है, जगत का युगानुयुग राज्य करने वाला वह परमेश्वर है, जगत का युगानुयुग राज करने वाला। दानियल 2:44 कहता है, परमेश्वर का राज्य अनंत काल तक स्थिर रहेगा। और 1 तिमोथियस 6:13-16 में हम पाते हैं, परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु और अमरता उसी का है। भजनकार भजन 102:11-12 में कहते हैं, मेरे दिन संध्या की छाया के समान है, मैं घास के समान मुरझा जाता हूँ, परंतु हे यहोवा, तू तो सर्वदा सिंहासन पर विराजमान रहता है, तेरी कीर्ति पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है। भजन संहिता 102:11-12। परमेश्वर की अनंतता का अर्थ है उसकी धार्मिकता और शांति की अनंतता। जब हम अनंत परमेश्वर को अपना शरण स्थल बनाते हैं तो हम कभी विचलित नहीं होंगे। हमारे आसपास की हर चीज बदलती और नष्ट होती रहती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो हम हमेशा के लिए उसमें रह सकते हैं। आइए हम यशायाह 44:6-8 पढ़ें। यहाँ हम हमारे एकमात्र परमेश्वर के विषय में पढ़ सकते हैं और अधिक जान सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर की अद्वितीय का वर्णन है। यहाँ कहता है, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यों कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरी नाई उसको प्रचार करे और बताए और मेरे लिए रचे अथवा होनहार बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और ना भयमान हो, क्योंकि मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की। तू मेरे साक्षी हो, क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। बाइबल यह स्पष्ट करती है कि केवल एक ही परमेश्वर है, वह परमेश्वर जिसने हमें बनाया है और जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च शासक है। परमेश्वर का वचन इस बात पर जोर देता है कि प्रभु ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। आइए आगे हम परमेश्वर की अद्वितीयता के बारे में और समझ सकते हैं इन पदस्थलों से। यशायाह 45:5-6 में कहता है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल लोग जान ले कि उसे छोड़ दूसरा कोई यहोवा नहीं। यशायाह 43:10 में हम पाते हैं, यह उससे पहले ना कोई परमेश्वर था ना कोई होगा। और 1 कुरिन्थियों 8:6 में पाते हैं, हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। भजन संहिता 86:10 में कहता है, वह महान और आश्चर्य काम करने वाला है, वही परमेश्वर है। जितना अधिक हम परमेश्वर की अद्वितीयता की सराहना करना सीखेंगे, उतना ही अधिक हम उसकी पहली और दूसरी आज्ञाओं की सराहना करेंगे, जो लिखा है निर्गमन 20:3-4 में। जैसे जैसे हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करेंगे, हम अपने अन्य देवताओं को त्याग देंगे और केवल उसकी आराधना करेंगे। यशायाह 44:8 में चट्टान ईश्वर के लिए एक सामान्य शास्त्रीय शब्द है, जो उसके असीम गुणों और उसकी ताकत को दर्शाता है। इसके लिए हम और दूसरे आयत भी देख सकते हैं, जैसा कि व्यवस्था विवरण 32:4, 2 सामुएल 22:3, 23:3, भजन संहिता 18:2। आइए आगे हम यशायाह 14:26-27 देखें। यहाँ पर हमारे सर्वव्यापक परमेश्वर के बारे में लिखा है। यशायाह 14:27 कहता है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसका टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? जब यशायाह ने ये शब्द लिखे, जब यशायाह ने इन शब्दों को इस पद में लिखे, सारी दुनिया असुर की शक्ति से भयभीत थी। असुर को अंग्रेजी में असीरिया कहते हैं, लेकिन यशायाह ने प्रभु को ऐसे देखा जिसने पानी को अपनी मुट्ठी में मापा और अपने बित्ते से आकाश को नापा, जिसके सामने राष्ट्र एक बाल्टी की एक बूंद के समान और तराजू की धूल के समान गिने जाते हैं। यशायाह 40 का 12 और 15 पद में लिखा है, यशायाह ने अशूर और अपने समय के अन्य राष्ट्रों के विरुद्ध न्याय करने के लिए परमेश्वर के हाथ को देखा और जानता था कि स्वर्ग या पृथ्वी में कोई शक्ति नहीं थी जो इसे वापस मोड़ सके। जब परमेश्वर कुछ करने का इरादा करता है तो उसकी इच्छा पूरी होगी, चाहे मनुष्य की इच्छा कुछ भी हो। मत्ती 10 का 29 और 30 हमें हमारे विश्वव्यापी परमेश्वर के बारे में 3 या 4 तत्व सिखाया जाता है। यह जानना सुकून देने वाला है कि ऊपर का सर्वोच्च शासक हमारा मित्र है, हर जगह के लोग उसकी उद्धारक कृपा के पात्र हैं। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, परंतु हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है, कहता है प्रेरितों के काम 10 का 34 और 35 में। धरती पर रहते हुए मसीह ने जिस तरह से दूसरों के साथ व्यवहार किया उसे पता चलता है कि ईसाई धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका उद्देश्य सभी की सेवा करना है। हम हमारे जीवित परमेश्वर के विषय में यशायाह 10 का 10 और 11 में आगे पढ़ते हैं, अपनी अनंतता और अद्वितीयता के अलावा परमेश्वर के और भी विशेषताएं हैं। यिर्मयाह 10 का 10 और 11 हम पढ़ते हैं, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। 11 पद, तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। ये आयते इब्रानियों के जीवित परमेश्वर को मूर्ति पूजकों के हाथ से बनाए गए देवताओं के बिल्कुल विपरीत प्रस्तुत करती हैं, जिनमें कोई जीवन नहीं है। देखिए 1 सामुएल 17 का 36। जीवित परमेश्वर शब्द का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं कि परमेश्वर जीवित है, इसका अर्थ यह भी है कि परमेश्वर जीवन देता है। इसलिए भजनकार कहता है, मैं अपने पूरे प्राण से परमेश्वर अर्थात जीवित परमेश्वर के लिए प्यासा हूं, भजन संहिता 42 का 2 और भजन संहिता 63 का 1 में। भजनकार जानता है कि जैसे प्यासा जानवर पानी पीता है और तरोताजा हो जाता है, वैसे ही हम जीवित परमेश्वर के पास आ सकते हैं और नई ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें निगरानी, देखभाल और कार्य करने का विचार भी है, कुछ ऐसा जो जीवित परमेश्वर कर सकता है लेकिन मूर्तियां नहीं कर सकती। हम आभारी हो सकते हैं कि हमारे पास एक जीवित परमेश्वर है जिस पर हम अपनी हर जरूरत का ख्याल रखने के लिए भरोसा कर सकते हैं। निर्गमन 3 का 14 में ईश्वर का नाम पाया जाता है। इस नाम को बनाने वाले 4 हिब्रू अक्षरों में कोई संबंधित स्वर नहीं है। भक्त हिब्रू इस नाम को उच्चारण के लिए बहुत पवित्र मानते हैं। नाम से पता चलता है कि ईश्वर हमेशा मौजूद है, हमेशा सक्रिय ईश्वर है जो जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए तैयार रहता है। यीशु के बारे में पत्रस ने घोषणा की, आप मसीह हैं, जीवित ईश्वर के पुत्र, मत्ती 16 का 16। यीशु ने दावा किया कि वह जीवन देने वाला है, यूहन्ना 6 का 47 और 10 का 10। जीवन की रोटी, यूहन्ना 6 का 51। वह द्वार है, यूहन्ना 10 का 7 और 9। और यीशु मसीह चरवाहा है, यूहन्ना 10 का 14। यह मसीह ही थे जिन्होंने होरेब पर्वत की झाड़ी में से मूसा से कहा, मैं वही हूं जो मैं हूं। इस प्रकार तुम इज़राइल के बच्चों से कहो, मैं वही हूं जिसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, निर्गमन 3 का 14। यह इज़राइल के उद्धार की प्रतिज्ञा थी, इसलिए जब वह मनुष्यों की समानता में आया तो उसने खुद को मैं हूं घोषित किया। बेतलहम का बच्चा नम्र और विनम्र उद्धारकर्ता मांस में प्रकट परमेश्वर है, 1 तिमोथियस 3 का 16। और हमसे वह कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं जीवित रोटी हूँ, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी पर सारी शक्ति मुझे दी गई है। मत्ती 28:18 में हम यह पाते हैं। मैं हर एक प्रतिज्ञा का निश्चय हूँ, मैं हूँ, डरो मत, यीशु मसीह कहता है। वाहन एलन जी वाइट इसे द डिजायर ऑफ एजेस पृष्ठ 24-25 में व्याख्या की है। मसीह के वचन अनंत जीवन देते हैं, इसीलिए हमें उसे सुनना चाहिए और उसे अपने जीवन में अमल करना चाहिए, अपने जीवन में लागू करना चाहिए। भजन संहिता 139:7-10 में हम पढ़ेंगे तो हमारे परमेश्वर के बारे में पाएंगे कि वह सर्वव्यापी परमेश्वर है। यहाँ कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछावना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा, अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। ईश्वर हमारा परमेश्वर हर जगह है। परमेश्वर ने हमें अपने वचन में आश्वासन दिया है कि वह हमेशा हमारे साथ मौजूद है। अपने अनुयायियों के साथ यीशु ने कहा, देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और यहाँ तक कि दुनिया के अंत तक। मत्ती 28:20 पद में अपने भविष्यवक्ता यशायाह के माध्यम से परमेश्वर ने साहस के ये शब्द कहे, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा और तुम्हारी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूँगा। यशायाह 41:10 में अंतिम संकट में परमेश्वर के लोग यह कहने में सक्षम होंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। भजन संहिता 46:7 में मिलता है। दाऊद की परमेश्वर की अवधारणा में हम ये शब्द पाते हैं, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और सब जातियों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। पहला इतिहास 16:24-25। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने यह कहने की अनुमति नहीं दी कि वह हमें और अधिक दे सकता था या मानव परिवार के लिए प्रेम का अधिक परिमाण प्रकट कर सकता था। यूहन्ना 1:14 में हम पाते हैं, उसने अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में मनुष्य रूप में भेजा कि वह हमारे बीच में रहे, हमें सच्चाई बतलाए और अपना परमेश्वर का प्रेम दिखाए और परमेश्वर के पास ले जाए। प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि हम उस एकमात्र शाश्वत जीवित परमेश्वर की सेवा करें जो हमें अपने उद्धारक अनुग्रह का पात्र बनाना चाहता है और बनाकर प्रसन्न होता है। उसकी महानता और सर्वव्यापकता हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शक्ति और साहस देते हैं। ऐसा मित्र हमें और कहीं नहीं मिल सकता, इसलिए आइए हम उसके पास आए। वह हमारा सहायता करेगा हर एक परिस्थितियों में, हर एक संकट में वह हमारी मदद करेगा। वह सर्वशक्तिमान है, सब जगह वह उपस्थित है हमें मदद करने के लिए, हमें बचाने के लिए। आइए हम उसकी ओर अपना दृष्टि डालें और उधार पाएं। आइए हम उसके पास आएं और उसके रास्तों में चलें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरा स्तुति और उपासना करते हैं। तो हमारा परमेश्वर है, हम तेरी उपासना करना चाहते हैं, तेरे नज़दीक रहना चाहते हैं और तेरे रास्ता में चलना चाहते हैं पिता। हम सबों को तो आशीष दे। मेरे श्रोताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उन्हें तो विशेष आशीष दे और हम सबों को तेरा आत्मा के द्वारा तेरे नज़दीक ला और तेरे नाम पर चला। हम सबों को तुम
उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान,
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।